पढ़ेंगे और ज्ञानमती माता के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के और भी अधिक प्रसन्नता की अनुभूति होगी। अनंतनाथ भगवान की स्तुति इसमें चल रही है। आपको एक बात पुनरावृत्ति कर देती हूँ कि कल्याण कल्पतरु स्तोत्र एक चमत्कारिक स्तोत्र है। इस युग के लिए विद्वत्ता को सिखाने हेतु, विद्वत्ता को प्राप्त कराने के लिए छंद, अलंकार, व्याकरण और कोश, इन चारों का ज्ञान प्राप्त कराने वाला यह है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। एकाक्षरी छंद से प्रारंभ हुआ है और इसमें 145 छंदों का प्रयोग हुआ है। एकाक्षरी से लेकर 30 अक्षरी तक के छंद इसमें गर्भित हैं। अनंतनाथ भगवान की स्तुति 12 और 13 अक्षरी छंद में निबद्ध है। भगवान अनंतनाथ जैन शासन के 14वें तीर्थंकर हैं। अयोध्या में ही इनका जन्म हुआ है। 5 तीर्थंकरों में से यह अंतिम तीर्थंकर अने भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ है। उन अनंतनाथ भगवान के बारे में आप लोगों ने जाना है। स्तुति में 12 अक्षरी छंद में जलोद्धत गति छंद, प्रियंवदा छंद, ललिता छंद, क्षमा छंद, इन सब के माध्यम से जाना कि राजा सिंहसेन, एक समय राजा सिंहसेन अयोध्या में राज्य कर रहे थे और उनके आंगन में जय श्यामा महारानी के गर्भ से तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ ने जन्म लिया। आज आप इसके 5वें छंद पर आएंगे। 5वां श्लोक है प्रहर्षिणी छंद। 13 अक्षरीय छंद है। ऊपर क्षमा छंद भी 13 अक्षरी छंद था और ये प्रहर्षिणी जिसको पढ़ते ही अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो और भगवान के गुण हमारे अंदर कुछ प्रकट हो, इस भावना को लेकर पूज्यगणी ज्ञानमती माता ही ने जो इसकी रचना की है वही प्रस्तुत है। चैत त्रस्यासित इति तीर्थ कर्तुरेकम् कैवल्यम् विलसित मन्ति मे दिने वै संप्राप्ता स्वशिवपदं सतत्तिथौ तद्भक्ते फलमिदमेव मेऽपि भूयात्। इस श्लोक के माध्यम से कहा पूज्य माता जी ने कि चैत्रस्य असिते अंतिम दिने वै इति तीर्थ कर्तुः, अर्थात चैत बदी अमावस के दिन तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। गर्भ, जन्म, तप, इन कल्याणों के बारे में आपको बताया गया कि कार्तिक बदी एकम के दिन भगवान गर्भ में आए, ज्येष्ठ बदी 12 के दिन उन्होंने जन्म धारण किया और ज्येष्ठ बदी 12 को ही उन्होंने दीक्षा धारण की। पुनः चतुर्थ केवल चतुर्थ कल्याणक केवल ज्ञान के रूप में हुआ। तो चैत बदी अमावस के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अमावस की तिथि लोग खराब समझते हैं क्योंकि अंधियारी रात होती है, लेकिन अगर भगवान का कोई कल्याणक हो जाता है तो अमावस्या भी पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह अमावस्या तिथि परम पवित्र हो जाती है। देखो आप दीपावली के दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो दीपावली का दिन बड़ा पवित्र पावन माना जाता है। तो चैत बदी अमावस को भगवान अनंतनाथ ने जन्म लिया, तो अनंतनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ और उसी तिथि में भगवान को मोक्ष भी हो गया। तत्तिथौ सा स्व शिव पदम संप्राप्ता करें और उसी तिथि में भगवान को मोक्ष पद भी प्राप्त हो गया। तद्भक्ते इदम एव फलम मे अपि भूयात्। इसमें आगे क्या कहा कि भगवान आपकी भक्ति से वही फल मुझे भी प्राप्त होवे। वही फल मतलब मोक्ष फल, जो फल आपने प्राप्त किया। इसीलिए हम लोग फल चढ़ा करके भगवान की भक्ति करते हैं। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामिति स्वाहा, अष्ट द्रव्य में पढ़ते हैं, तो वही मोक्ष का फल मुझे भी प्राप्त हो जाए, ऐसा अनंतनाथ भगवान से स्तुति की गई। यानी भगवान की केवल ज्ञान और मोक्ष की एक ही तिथि रही, जन्म और दीक्षा की एक ही तिथि है, और गर्भ कल्याणक कार्तिक बदी एक हमको हुआ। तीन तिथियों में पांच कल्याणक को भगवान ने प्राप्त किया। अब अंतिम श्लोक है अनुष्टुप छंद में, त्रिंसत लक्ष समात्मायु पंचाशत चाप सत्तनु कनक कनक संकासा तमंत कांत कम गता अनंत गुण राशिस्तम सेधा लांछन लांछिता देहि मे नंत धी सौख्यम जय श्यामात्मज प्रभो। क्या कहते हैं इसमें, ये दो श्लोक हैं अनुष्टुप छंद के, जिसमें प्रत्येक चरण में आठ आठ अक्षर हैं। यही अनुष्टुप छंद का लक्षण है। उस अनुष्टुप छंद के माध्यम से कहा, त्रिंसत लक्ष समात्मायु, 30 लाख वर्ष की आपकी आयु थी, यानी भगवान ऋषभदेव की 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु। ऐसे घटते घटते, अब क्योंकि ये अवसर्पणी काल चल रहा है, भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर हुए, तब इनकी आयु रह गई 30 लाख वर्ष। 30 लाख वर्ष आज के जमाने में कितनी अधिक लगती है, 30 लाख गुनी। आज 100 साल की आयु पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान की आयु 30 लाख साल की थी। उस समय लोगों की आयु ऐसी ही हुआ करती थी, पंचाशत चाप सत्तनु और 50 धनुष की ऊंचाई थी शरीर की, कनक कनक संकासा चमकते हुए स्वर्ण के समान आपके शरीर का वर्ण था। तम अंत कांतकम गतः, आपने यमराज का अंत कर दिया अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब संसार में आएंगे नहीं, तो जन्म और मरण दोनों का ही नाश कर दिया। तो अंतक का अंत, अंतक माने मृत्यु, यमराज, और उसका अंत कर दिया माने पुनः नहीं जन्म लेंगे तो मरण भी नहीं करेंगे। तो मौत और मोक्ष दोनों में अक्षर उतने ही हैं, लेकिन मौत का मतलब है जो बार बार जन्म लेने के बाद आती है उसे कहते हैं मौत, और जो जन्म लेकर के एक बार ही आयु समाप्त होकर के सिद्धशिला पर विराजमान होते हैं उसका नाम है मोक्ष। तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके ही भगवान आपने यमराज का अंत कर दिया। तम अनंत गुण राशि ही, और क्या फिर आप अनंत गुणों की राशि हैं। सेधा लांछन लांछिता, सेधा माने से ही, यही कोर्स पढ़ने का ये फायदा होता है कि सेही के कितने नाम है, सेधा और भी अनेक नाम है, एक एक चीज के अनेक अनेक नाम होते हैं पर्यायवाची, उनको हमें बताता है कोश। तो सेधा माने सेही, लांछन माने चिन्ह से, लांछित माने चिन्हित है, अर्थात आपका चिन्ह है सेही। जयस्यात्मा श्यामात्मज प्रभो, हे जय श्यामा के पुत्र, भगवान की माँ का नाम था जय श्यामा, तो हे जय श्यामा के आत्मज माने पुत्र, हे नाथ हे प्रभो, मैं अनंत धी सौख्यम देही, मुझे अनंत ज्ञान और अनंत सौख्य प्रदान करो। तो हे प्रभो, आपकी आयु 30 लाख वर्ष की थी, 50 धनुष आपके शरीर की ऊंचाई थी यानी 200 हाथ थी, सुंदर स्वर्ण के समान शरीर का वर्ण था, आप अंतक माने यमराज के लिए यमराज बन गए, उसका अंत कर दिया और मृत्यु को मानने वाले थे। हे भगवान, आप अनंत गुणों की राशि थे, आपका चिन्ह से ही, आपकी माता का नाम जय श्यामा, और इनका दूसरा नाम कहीं पर लक्ष्मीमती भी आया है, इसलिए ज्ञानमती माता जी ने उनका टिप्पणी में जय श्यामा की जगह टिप्पणी देकर के बताया कि उत्तर पुराण में जय श्यामा नाम है और अन्यत्र तिलोत्पण्णति आदि में कहीं लक्ष्मीमती भी नाम आया है। जो भी है उन नाम से सही जग की माता भगवान की माता थी, ऐसे ही भगवान आप मुझे अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रदान करें। इस प्रकार से अयोध्या में जन्मे भगवान अनंतनाथ का परिचय आपने इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से प्राप्त किया। आपको ज्यादा दिन अंतराल हो जाने के कारण कोई कठिनता भी आई हो तो भी हमने आज पुनः पीछे का रिवीजन करा करके आपको भाव बता दिया है। और अब आगे आगे धरनाथ भगवान आदि की स्तुतियां पढ़ते हुए फिर हम बीच में पहेलियों के माध्यम से आपकी परीक्षा भी लेते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान की इस स्तुति का सत्र समाप्त करते हैं। और दूसरा ग्रंथ हमारे सामने पद्मनंदी पंचविंशति का,